एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करेंगे, जेरेड डायमंड की अपहीवल, टर्निंग पॉइंट्स फॉर नेशंस इन क्राइसिस।
और ये विषय ऐसा है ना जो आजकल मतलब हर किसी के मन में है। हम अपने चारों तरफ देख ही रहे, कहीं राजनीतिक उथल पुथल है, कहीं आर्थिक चुनौतियां, फिर ये जलवायु परिवर्तन का खतरा।
बिल्कुल।
तो सवाल उठता है कि क्या देश मतलब राष्ट्र इन मुश्किलों से, इन संकटों से सीखते भी हैं? क्या वो जैसे इंसान सीखते हैं वैसे ही अपनी भूमिका, अपने लक्ष्य इनको दोबारा समझ पाते हैं? जेरेड डायमंड की ये किताब इसी बड़े सवाल को पकड़ने की कोशिश करती है और इसके जो निष्कर्ष हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं।
सही कहा। और जेरेड डायमंड मतलब इस सवाल के लिए शायद बेस्ट इंसान है। वो कोई ऐसे ही इतिहासकार या राजनीतिक विश्लेषक नहीं है।
हाँ।
वो एक अमरीकी विद्वान है जिन्हें हम पॉलीमैट कह सकते हैं। बहुत सारे विषयों के ज्ञाता, UCLA में भूगोल के प्रोफेसर हैं पर PhD फिजियोलॉजी में हैं।
हाँ, और उनकी वो मशहूर किताब गन्स जर्म्स एंड स्टील, उसके लिए तो पुलित्जर पुरस्कार भी मिला उन्हें।
बिल्कुल, उनकी खासियत ही यही है। वो मानव विज्ञान, इकोलॉजी, भूगोल, इतिहास, जेनेटिक्स, मतलब कई सारे फील्ड्स को मिलाकर बड़े सवालों के जवाब ढूंढते हैं।
वो छोटी मोटी घटनाओं पर नहीं बल्कि इतिहास के बड़े पैटर्न पर ध्यान देते हैं, मैक्रो हिस्ट्री जिसे कहते हैं।
और यही नजरिया अपहीवल को खास बनाता है। उनकी पिछली किताबें थीं कि समाज कैसे बनते हैं, कैसे बिखरते हैं। ये किताब पूछती है, जब समाज गहरे संकट में हो तो वो बच कैसे सकता है, अपना पुनर्निर्माण कैसे कर सकता है, क्या वो संकट को एक मौके में बदल सकता है अपनी नई भूमिका तय करने के लिए।
और कमाल की बात यह है, जैसा आपने कहा कि डायमंड इसका जवाब देने के लिए इतिहास के साथ साथ ना व्यक्तिगत मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं।
हाँ,
ये सुनने में पहले थोड़ा अजीब लगता है कि भाई देश के संकट की तुलना किसी व्यक्ति के निजी दुख से कैसे करें
जी।
पर यही इस किताब का मूल विचार है।
हाँ, डायमंड यही कहते हैं
कि जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए तलाक है, कोई गंभीर बीमारी है या किसी अपने की मौत, ऐसे सदमे से गुजरता है और उसे अपनी जिंदगी, अपनी पहचान, अपने जीने का मकसद सब फिर से समझना पड़ता है ना।
हाँ।
वैसे ही राष्ट्र भी युद्ध, गृह युद्ध, बड़े आर्थिक झटके, इनसे वो हिल जाते हैं, उनका पूरा सिस्टम बिखरने लगता है।
और जैसे एक व्यक्ति थेरेपी से या मतलब खुद सोच विचार करके उभरने का रास्ता ढूंढता है,
बिल्कुल
वैसे ही राष्ट्रों के उभरने के भी कुछ तरीके होते हैं।
डायमंड ने इसके लिए पर्सनल क्राइसिस थेरेपी के आधार पर 12 फैक्टर्स का एक फ्रेमवर्क बनाया है।
हाँ, 12 कारकों का ढांचा।
ये वो चीजें हैं जो तय करती हैं कि कोई देश संकट से सफलतापूर्वक निकलेगा या बिखर जाएगा।
तो ये किताब सिर्फ मतलब पुरानी कहानियां नहीं सुना रही।
नहीं,
ये एक तरह का विश्लेषण है, एक फ्रेमवर्क है जो हमें समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ देश मुश्किल हालात से और भी मजबूत होकर निकले और दूसरे क्यों फेल हो गए। ये सिर्फ किस्मत या रिसोर्स की बात नहीं है, ये उन सचेत फैसलों और राष्ट्रीय गुणों की बात है जो उस 12 कारक वाले ढांचे से मिलते जुलते हैं। इसमें ये भी शामिल है कि राष्ट्र अपनी भूमिका को कैसे समझता है और भविष्य के लिए क्या लक्ष्य रखता है।
किताब की बनावट भी इसी लॉजिक पर है। पहले हिस्से में वो समझाते हैं ये व्यक्तिगत संकट क्या है और ये 12 कारक क्या है।
हाँ।
फिर जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसमें वो इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। 7 देशों के केस स्टडीज हैं, फिनलैंड, जापान, चिली, इंडोनेशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, उनके संकट और उनसे निपटने के तरीके।
और आखिर में
वो इस फ्रेमवर्क को आज के जो वैश्विक संकट है उन पर लागू करते हैं।
अच्छा, तो थोड़ा और खोलते हैं इसको। जैसा आपने कहा, किताब की शुरुआत व्यक्तियों से होती है। डायमंड कहते हैं कि संकट असल में बाहरी समस्या से ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे जो रोजमर्रा के तरीके हैं ना,
हाँ, कोप करने के तरीके,
हाँ, मुश्किलों से निपटने की जो आदतें हैं वो उस वक्त फेल हो जाती हैं, नाकाफी साबित होती हैं। हमें कुछ नया सोचना पड़ता है, कुछ अलग करना पड़ता है।
यहीं पर वो 12 कारक आते हैं। अब सारे 12 तो हम यहाँ नहीं गिना सकते, वो थोड़ा,
हाँ, वो अकादमिक हो जाएगा।
हाँ, लेकिन कुछ सबसे जरूरी वाले देख लेते हैं। जैसे पहला, संकट को स्वीकारना, मानना कि हाँ हम मुश्किल में हैं,
एक्नॉलेजमेंट।
दूसरा, जिम्मेदारी लेना, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई हमें ही कुछ करना होगा।
सही।
तीसरा, सीमा बनाना, बिल्डिंग अ फेंस, यानी ये तय करना कि किन समस्याओं पर ध्यान देना है अभी। सब कुछ एक साथ नहीं सुलझा सकते,
ठीक है, फोकस करना।
चौथा, मदद मांगना, गेटिंग हेल्प, दूसरों से सहायता लेना, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीति।
पांचवा, ईमानदार आत्म मूल्यांकन, ऑनेस्ट सेल्फ अप्रेजल, अपनी ताकत और कमजोरी को बिना किसी बहाने के देखना, ये समझना कि राष्ट्र के तौर पर हमारी अभी की भूमिका क्या काम कर रही है।
ये मुश्किल होगा।
बहुत मुश्किल। और छठा, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, पुरानी सोच, पुराने तरीके जो अब काम नहीं कर रहे उन्हें बदलने की हिम्मत।
और सातवां, मूल मूल्य,
कोर वैल्यूज। ये पहचानना कि हमारी पहचान का कौन सा हिस्सा है जिसे हम बदल नहीं सकते और क्या है जिसे वक्त के साथ बदलना जरूरी है। मतलब अपनी जड़ों को बचाते हुए अपनी भूमिका और लक्ष्य को सिचुएशन के हिसाब से बदलना।
हाँ, बिल्कुल।
इन कारकों को समझने के लिए ना वो केस स्टडीज बहुत अच्छी हैं। फिनलैंड का उदाहरण लें। 1939 में सोचिए, विशाल सोवियत संघ ने उस छोटे से देश पर हमला कर दिया।
उनके तो अस्तित्व का ही संकट आ गया होगा।
बिल्कुल। अब फिनलैंड ने क्या किया? डायमंड बताते हैं कि उनकी एक तो राष्ट्रीय पहचान बहुत मजबूत थी, जिसे वो अहम शक्ति या ईगो स्ट्रेंथ कहते हैं। पर उससे भी ज्यादा जरूरी था उनका यथार्थवाद, रियलिज्म। उन्होंने ईमानदारी से आत्म मूल्यांकन किया, ऑनेस्ट सेल्फ अप्रीजल, कि भाई ये युद्ध हम जीत नहीं सकते,
ये मानना भी बड़ी बात है।
हाँ, तो उन्हें समझौता करना ही होगा। और उन्होंने जिम्मेदारी ली, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक मुश्किल पर प्रैक्टिकल रास्ता चुना।
वो क्या था?
उन्होंने किया चयनात्मक परिवर्तन, सिलेक्टिव चेंज। अपनी घरेलू आजादी बचाने के लिए उन्होंने कुछ जमीन छोड़ दी और विदेश नीति में सोवियत संघ का प्रभाव मान लिया।
अच्छा, इसी को फिनलैंडाइजेशन कहते हैं?
हाँ, यही है फिनलैंडाइजेशन। ये एक तरह से फिनलैंड ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को हालात के मुताबिक ढाला। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, अपने अस्तित्व को बचाना।
मदद भी मांगी होगी उन्होंने?
हाँ, मदद मांगी, पर ज्यादा मिली नहीं, और स्वीडन जैसे पड़ोसियों से सीखा।
लेकिन इस पर बहस तो होती होगी कि क्या ये एक तरह की मजबूरी थी अपनी आजादी से समझौता?
हाँ, ये बहस तो हमेशा रही है, लेकिन डायमंड के नजरिए से देखें तो ये फिनलैंड का एक सोचा समझा यथार्थवादी फैसला था। उन्होंने अपनी सीमाएं पहचानी और जो उनके लिए सबसे जरूरी था, उनकी अंदरूनी आजादी और पहचान, कोर वैल्यूज, उसे बचाने के लिए उन्होंने अपनी बाहरी भूमिका, रोल को बदलने का लचीलापन दिखाया, और ये काम कर गया।
एक और जो हैरान करने वाला उदाहरण है वो जापान का है, खासकर 19वीं सदी के बीच में, मीजी रेस्टोरेशन के टाइम का।
हाँ, वो तो कमाल ही है।
अमेरिकी कमोलोर पेरी के जहाज आए और जापान का जो 200 साल का एकांतवास था वो टूट गया। अचानक उन्हें लगा कि अरे, हम तो तकनीकी और मिलिट्री के मामले में बहुत पीछे रह गए। ये उनके लिए बहुत बड़ा शौक था, एक तरह से राष्ट्रीय अपमान।
और जापान ने रिएक्ट कैसे किया? कमाल का। उन्होंने फौरन संकट को माना, एक्नॉलेजमेंट, और जिम्मेदारी ली, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
हाँ।
फिर उनमें जो लचीलापन दिखा वो देखने लायक था। बहुत तेजी से चयनात्मक परिवर्तन किया, पश्चिमी देशों से सीखा, उनकी टेक्नोलॉजी, सेना, सरकार का ढांचा सब अपनाया,
लेकिन अपनी चीजें भी बचाई।
हाँ, यही खास बात है, अपनी संस्कृति, अपने सम्राट, कोर वैल्यूज, इनको बनाए रखा। उनका लक्ष्य एकदम साफ था, मॉडर्न बनना है, दुनिया में अपनी जगह बनानी है, पर अपनी जापानी पहचान खोई बिना।
और उन्होंने अपनी राष्ट्रीय भूमिका को पूरी तरह से बदल डाला। एक अलग थलग पड़े देश से दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने का सफर कुछ ही दशकों में।
ये बिना साफ साफ आत्म मूल्यांकन के हो ही नहीं सकता था।
और फिर जर्मनी का उदाहरण, दूसरे विश्व युद्ध के बाद हार, देश का बंटवारा, नैतिक पतन और वो होलोकॉस्ट की भयानक जिम्मेदारी।
इससे बड़ा संकट क्या होगा किसी देश के लिए?
जर्मनी की जो उभरने की कहानी है उसे अक्सर सबसे सफल राष्ट्रीय रिकवरी माना जाता है, और डायमंड कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण था जर्मनी का गहरा, दर्दनाक लेकिन एकदम ईमानदार आत्म मूल्यांकन,
ऑनेस्ट सेल्फ अप्रीजल,
वो जिसे जर्मन में कहते हैं वगांगन हाइट्स बिवेल्टिगुंग।
हाँ, यानी अतीत का सामना करना, उसकी जिम्मेदारी लेना,
एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
उन्होंने अपने अपराधों को छुपाया नहीं, उनसे मुंह नहीं मोड़ा। वो विली ब्रांड का वॉरसॉ घेटो मेमोरियल पर घुटने टेकना, वो एक सिंबल बन गया।
हाँ, बहुत पावरफुल इमेज है वो।
उन्होंने भारी मदद ली, जैसे अमेरिका का मार्शल प्लान, और पश्चिमी लोकतंत्रों को मॉडल बनाया। इस पूरी प्रक्रिया ने जर्मनी को एक नई राष्ट्रीय पहचान दी, एक नई भूमिका या रोल दी।
क्या भूमिका?
एक शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और जिम्मेदार यूरोपीय देश की। उनका लक्ष्य था दुनिया का भरोसा वापस जीतना और अपने अतीत से सबक लेना।
ये ऐतिहासिक उदाहरण तो वाकई बहुत कुछ सिखाते हैं, पर डायमंड इस फ्रेमवर्क को आज की दुनिया पर कैसे लागू करते हैं, खासकर अमेरिका और जो ग्लोबल संकट है उनके बारे में?
तो डायमंड अमेरिका को लेकर थोड़े चिंतित लगते हैं। उनका तर्क है कि अमेरिका की जो ताकतें रही हैं, उसका भूगोल, उसकी संस्थाएं, वही अब उसके लिए एक तरह से बोझ बन गई हैं।
बोझ? कैसे?
क्योंकि उसे लगता है कि वो असाधारण है, एक्सेप्शनल है, सबसे अलग है, और इसी वजह से वो अपने अंदर के संकटों को, जैसे राजनीतिक कड़वाहट बढ़ रही है, आर्थिक असमानता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, इनको ठीक से स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है।
अच्छा,
यानी वो ईमानदार आत्ममूल्यांकन और लचीलेपन में पीछे हट रहा है, अपनी बदलती ग्लोबल भूमिका को समझ नहीं पा रहा या नए राष्ट्रीय लक्ष्य तय नहीं कर पा रहा। कुछ ऐसा ही डायमंड का विश्लेषण है। और जब बात आती है वैश्विक संकटों की, क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स की कमी, महामारी, परमाणु युद्ध का खतरा, तो डायमंड कहते हैं कि अब पूरी दुनिया को मिलकर इसी 12 कारक वाले ढांचे को अपनाने की जरूरत है।
मतलब ग्लोबल लेवल पे संकट को स्वीकारना,
एक्नॉलेजमेंट,
हाँ,
अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मतलब एक दूसरे से मदद लेना,
बिल्कुल,
अपनी जीवन शैली और अर्थव्यवस्थाओं को बदलने का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी,
और एक साझा ग्लोबल लक्ष्य तय करना।
एग्जैक्टली, ये अब किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की चुनौती है।
इस पूरी बातचीत से ना कुछ बहुत जरूरी थीम्स या संदेश निकल कर आ रहे हैं।
हाँ।
पहला तो यही, जो व्यक्तिगत और राष्ट्रीय संकट के बीच की जो तुलना है,
हाँ, वो एनालॉजी,
ये इतिहास को समझने का एक बहुत ही मानवीय तरीका है। जैसे हम अपनी निजी जिंदगी में मुश्किलों से सीखते हैं, अपनी गलतियां मानते हैं या नहीं मानते, मदद मांगते हैं, बदलते हैं, वैसे ही देश भी करते हैं।
हाँ, और दूसरा और शायद सबसे जरूरी संदेश, ईमानदार आत्म मूल्यांकन का महत्व। ये शायद सबसे मुश्किल काम है।
हाँ,
चाहे व्यक्ति हो या देश, अपने अतीत की गलतियों, अपनी कमजोरियों को मानना, जर्मनी का उदाहरण दिखाता है कि ये कितना दर्दनाक हो सकता है पर लंबे समय में कितना फायदेमंद भी।
भारत के बारे में भी सोचें तो क्या हम अपने इतिहास और आज की चुनौतियों का पूरी ईमानदारी से मूल्यांकन करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है।
बिल्कुल। तीसरा अहम विचार है चयनात्मक परिवर्तन, सिलेक्टिव चेंज का। यानी परंपरा और आधुनिकता या अपनी पहचान और जरूरी बदलाव के बीच बैलेंस बनाना। मीजी जापान ने ये बहुत अच्छे से किया। हमें भी सोचना होगा कि अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों, कोर वैल्यूज को बचाते हुए हम आज की दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी भूमिका, रोल और तरीकों में क्या बदलाव ला सकते हैं। ये बैलेंस साधनाएं असली आर्ट है।
सही कहा।
और चौथा संदेश है एक सतर्क आशावाद का, कॉशियस ऑप्टिमिज्म। डायमंड ये नहीं कहते कि सब ठीक हो जाएगा,
नहीं,
लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि पतन या बर्बादी कोई नियति नहीं है। राष्ट्रों के पास, लोगों के पास विकल्प चुनने की क्षमता होती है, ह्यूमन एजेंसी।
हाँ, हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं। ये फ्रेमवर्क हमें बेहतर ऑप्शन चुनने में मदद कर सकता है, हम अपने लिए बेहतर लक्ष्य, गोल्स तय कर सकते हैं।
किताब में कई ऐसी बातें हैं जो रुक कर सोचने पे मजबूर करती हैं। कुछ विचारों को अगर हम दोबारा देखें, जैसे ये वाला कि संकट बाहरी समस्या से नहीं बल्कि उस बिंदु से परिभाषित होता है जब आपके सामान्य सामना करने के तरीके अपर्याप्त हो जाते हैं।
ये गहरी बात है। मतलब बदलाव तभी आता है जब हम मानते हैं कि हमारा मौजूदा तरीका काम नहीं कर रहा।
बिल्कुल, इसीलिए स्वीकृति पहला कदम है। जब तक प्रॉब्लम मानेंगे ही नहीं, सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे?
कर रहे हैं। और जिंदा रहने के लिए किन हिस्सों को छोड़ना होगा?
ये प्रैक्टिकलिटी और लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी की बात है। क्या रखना है, क्या बदलना है, ये तय करना ही स्ट्रैटेजी है। अपनी भूमिका को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। जिद या पुरानी सोच पर अड़े रहना अक्सर नुकसान करता है।
अमेरिका के बारे में ये कोट भी सोचने लायक है। जो फायदे अमेरिका के लिए इतने लंबे समय तक इतने अच्छे रहे हैं, वे अब उसके सबसे बड़े नुकसान बन गए हैं, क्योंकि वे असाधारणता की भावना को बढ़ावा देते हैं, जिससे यह स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है कि हम गंभीर संकट में हैं।
ये दिखाता है कि कैसे पिछली सक्सेस हमें अंधा बना सकती है।
हाँ, कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है।
हाँ, आत्मसंतोष, वो हमें अपनी कमियों को देखने और मानने से रोकता है। ये किसी भी इंसान, संस्था या देश के लिए सच हो सकता है।
और आखिर में वो उम्मीद जगाने वाली बात, राष्ट्रों लोगों की तरह एजेंसी होती है, उनका भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं होता। जब लोग अपनी समस्याओं का ईमानदारी और रचनात्मक रूप से सामना करने का विकल्प चुनते हैं, तो क्या संभव है।
ये हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ हालात के शिकार नहीं हैं, हमारे पास चुनने की ताकत है। वी हैव चॉइस। हम तय कर सकते हैं कि हमें क्या बनना है, हमारा लक्ष्य गोल क्या है, हमारी भूमिका रोल क्या होगी।
अब सवाल ये है कि इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, हम इन्हें कैसे इस्तेमाल करें।
देखो, पर्सनल लेवल पर तो ये बहुत ही उपयोगी है।
डायमंड के बताए फैक्टर्स जैसे संकट को मानना, जिम्मेदारी लेना, ईमानदारी से खुद को देखना, लचीलापन दिखाना, मदद मांगना,
हाँ,
ये सब हमें अपनी निजी चुनौतियों से, चाहे वो करियर में हो, रिश्तों में हो, सेहत में हो, उनसे निपटने में मदद कर सकते हैं। ये हमें हेल्पलेस फील करने के बजाय एक्शन लेने की तरफ ले जाते हैं। ये हमें अपने जीवन की भूमिका और लक्ष्यों को फिर से समझने में मदद करते हैं। कमाल, अपने आसपास जो हो रहा है, अपने देश की नीतियां, दुनिया में जो बहस चल रही है, उसे समझने के लिए कर सकते हैं।
कैसे?
हम पूछ सकते हैं, क्या हमारे नेता या समाज के तौर पर हम समस्याओं को स्वीकार कर रहे हैं? क्या हम ईमानदारी से आत्ममूल्यांकन कर रहे हैं? क्या हम जरूरी बदलावों के लिए तैयार हैं? क्या हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य साफ हैं, यथार्थवादी हैं? ये सवाल हमें ज्यादा जागरूक नागरिक बनाते हैं।
ये किताब एक तरह से मतलब समझौता करने, मिलकर काम करने और फैक्ट्स के आधार पर फैसले लेने की बात करती है।
हाँ बिल्कुल,
शायद आज के इस पोलराइज्ड माहौल में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
सही कहा। तो अंत में इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही? कोई एक बात जो दिमाग में रह गई हो?
मेरे लिए तो वो पर्सनल और नेशनल क्राइसिस वाली एनालॉजी ही सबसे स्ट्राइकिंग रही। उसने इतिहास को एकदम मानवीय बना दिया, और ये सोचना कि मुश्किल से उभरने का एक तरीका, एक रोडमैप हो सकता है, ये बहुत एम्पावरिंग फील कराता है, जैसे रास्ता पता चल गया हो।
और मेरे लिए वो ईमानदार आत्ममूल्यांकन का आइडिया सबसे गहरा असर छोड़ गया। ये कितना मुश्किल है, पर कितना जरूरी भी, और साथ ही वो सतर्क आशावाद वाला संदेश।
हाँ, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, कोई शक नहीं, लेकिन इतिहास हमें दिखाता है कि अगर राष्ट्र और लोग सही चुनाव करें, अपनी भूमिका को समझें और सही लक्ष्य तय करें, तो पॉजिटिव बदलाव मुमकिन है। भविष्य हमारे हाथ में है,
और शायद यही सोच हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। तो श्रोताओं के लिए आज का विचार ये छोड़ जाते हैं, अगर देश और व्यक्ति संकट से एक जैसे सीखते हैं, तो क्या वैश्विक संकटों से निपटने के लिए हमें एक तरह की वैश्विक थेरेपी या सामूहिक आत्ममंथन की जरूरत है, जहां हम सब मिलकर अपनी सामूहिक भूमिका और साझा लक्ष्य तय कर सकें। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।